हरे कृष्णा। सब लोग मेरे बात दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप इतवार के दिन समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं हमारे स्नेह मिलन कार्यक्रम में। तो आज का हमारा विषय है काल, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। हम सबको वैदिक शास्त्रों से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान महाविष्णु के रूप में कारण सागर में लेटते हैं योग निद्रा में, और वो इस भौतिक जगत के सबसे प्रथम पुरुष हैं। वो आध्यात्मिक जगत के जो नारायण, भगवान नारायण हैं, उनका विस्तार है। और भगवान नारायण के ऊपर जितने भी भगवान के विस्तार हैं वो आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सर्वप्रथम कृष्ण भगवान हैं, उसके बाद बलराम जी, उसके बाद संकर्षण, उसके बाद चतुर्व्यूह, उसके बाद नारायण। ये सब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में हैं। और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इसमें फर्क यह है कि भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु होते रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु नहीं होते। ये बहुत मूलभूत फर्क है। उसके आगे कई फर्क हैं, जैसे यहाँ पर जो शरीर है वो मृत्यु प्राप्त करने वाला शरीर है, और वहाँ पर जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जो ज्ञान से भरा होता है, जो चिरंतन होता है। और यहाँ पर जो जीव भगवान को भूलना चाहता है, जो उनके नियंत्रण को पालन नहीं करना चाहता है, उनके नियंत्रण में रहना छोड़कर अलग से रहना चाहता है, वो सब हम लोग हैं जो इस भौतिक दुनिया में जन्म लेते हैं। और उसका मतलब है शरीर को धारण करना, देहधारी बन जाते हैं। और जैसे ही देहधारी बन जाते हैं तो जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये हमको लागू हो जाता है और एक नश्वर जीवन हम जीना आरंभ कर देते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? जैसे कोई राजा जो होता है कोई प्रजा के लिए शहर बनाता है, तो शहर के कोने में एक जेल भी बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ लोग राज्य के नियम का पालन नहीं करेंगे, उसको तोड़ेंगे, विद्रोह करेंगे, इसलिए शहर के साथ साथ एक कोने में जेल भी बनता है। उसी तरह से भगवान ने अपना सृष्टि का निर्माण किया तो एक कोने में भौतिक जगत भी बनाया। इसका मतलब आध्यात्मिक जगत जो है वो भौतिक जगत से कई गुना बड़ा है, और जो लोग उनके नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं वो इस भौतिक दुनिया में आते हैं, जो शरीर धारण करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका निरंतर दुख भोगते रहते हैं। तो निर्माण कैसे होता है? महाविष्णु जो इस भौतिक जगत के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, वो योग निद्रा में रहते हैं। जब अपने नेत्र खोलकर इस सृष्टि पर नजर डालते हैं तो काल प्रभावित हो जाता है, और काल के प्रभाव से तीन गुण जो हैं वो भी जागृत हो जाते हैं, सत्वर गुण, रजगुण और तमोगुण, और काल का प्रभाव इन तीन गुणों पर पड़ने से आगे सृष्टि का निर्माण साधु होता है। तो ये होता है, एक तत्व है जिसका नाम है महत्तत्व। महत्तत्व यानी आध्यात्मिक जगत को भौतिक जगत से अलग करने वाली वस्तु होती है, उसके नीचे अंधकार होता है। और वो महत्तत्व पर जब भगवान दृष्टि डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो समय काल जो है वो कार्यान्वित हो जाता है, और उसके प्रभाव से तीन गुण भी कार्यान्वित होते हैं, और फिर अलग अलग ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण होता है। बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है ये, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको ये पता नहीं है। वो सोचते हैं कि आकाश में कोई बड़े दो वस्तु थे जो टकरा गए, बहुत बड़ा बैंग, बिग बैंग हो गया, और उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और धीरे धीरे पृथ्वी निर्माण हो गई ऐसा सोचते हो। ये तो जब संत लोग इसके बारे में सुनते ना, जैसे हमारे घर में आपको घर में कोई छोटे छोटे बालक होते ना, वो कभी कभी बोलते हैं अरे मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरे पापा ने वैसा किया, तो लोग कैसे ठहाका मार के हंसते हैं ना, अरे बालक है। ऐसे ही संत लोग जब ये साइंटिस्ट की बातें सुनते हैं ना, वो बच्चों की बातें जैसे हैं, तो कोई अर्थ ही नहीं है, कोई बेसिस ही नहीं है। आज तक हमने कोई बिग बैंग या विस्फोट के बाद में कोई निर्माण होते हुए कुछ देखा है क्या? हाँ, हमारे अभी आजकल के ज़माने में कितने विस्फोट होते हैं, कभी देखा है विस्फोट के बाद में चार बच्चे पैदा हो गए, एक बिल्डिंग पैदा हो गई, अच्छी सी बहुत सुंदर बगीचा पैदा हो गया, और लोग आनंद करने लगे उसके अंदर, सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा होता है क्या? जो भी निर्माण किया हुआ है वो नष्ट होता हुआ नजर आता है विस्फोट होने के बाद में। तो ये कौन सा अनोखा विस्फोट है जो विस्फोट होने के पश्चात पूरा निर्माण हो गया, पृथ्वी हो गई, चंद्र हो गए, तारे हो गए, ग्रह हो गए, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा शास्त्र जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक। तो इस तरह से फिर ब्रह्मादि का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी के द्वारा बाकी लोगों के निर्माण होता है, फिर ब्रह्मा जी महत्तत्व से कई तत्व लेते हैं, 24 तत्वों का वर्णन किया गया है, वो यहाँ पर नहीं बताएंगे, बहुत विस्तार है उसका। वो 24 तत्वों से क्या होता है, हमारा शरीर बनता है, जो सबसे अलग अलग है। देखो इतनी स्त्रियाँ बैठी है सब अलग अलग है, इतने पुरुष बैठे सब अलग अलग है, नोबडी इज सेम। हाँ, चार कुत्ते लीजिए, 50 कुत्ते लीजिए, 50,000 कुत्ते लीजिए, हर कुत्ता अलग है। वैसे हाथी लीजिए अलग है, वैसे पंछी लीजिए अलग है, वैसे इंसान लीजिए वो भी अलग है। ये भगवान के निर्माण की खूबी है। लेकिन एक हमको समझना बहुत जरूरी है, जो आज के विषय के अनुरूप है, कि इस विश्व की एक शुरुआत है और उसका एक अंत है। आध्यात्मिक जगत का कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है, वो अनादि कहा गया है उसको। लेकिन जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं उसकी सब चीज़ की शुरुआत है और सब चीज़ का अंत है, जो हमारे आत्मा के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। हमारे आत्मा चिरंतन है, अनादि है, आत्मा भगवान का अंश है, भगवान चिरंतन है तो भगवान का अंश भी चिरंतन है। लेकिन यहाँ जब शरीर धारण करता है तो उसकी एक बिगिनिंग होती है जिसको हम जन्म कहते हैं, उसका एक अंत होता है जिसको हम मृत्यु कहते हैं, और जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ घटनाएँ होती है, जो बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, कष्ट आते हैं, मन के द्वारा कष्ट होते हैं, शरीर के द्वारा कष्ट होते हैं, फिर अन्य लोग कष्ट देते हैं हमको, कोई कुत्ता काट लेता है, कोई वायरस काट लेता है, कोई मच्छर काट लेता है, बीमारियाँ होती है, कोई बहू सास को तकलीफ देती है, सास बहू को तकलीफ देती है, बेटा पिताजी को देता है, पिताजी बेटे को देता है, पड़ोसी हमको देते हैं, अन्य जीवों के द्वारा हुआ कष्ट, ये दूसरा प्रकार का कष्ट है। और तीसरा कष्ट कौन सा है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, कभी तूफान आता है, कभी आंधी आती है, कभी सुनामी आता है, हाँ कभी बॉम्ब विस्फोट होता है, कभी ग्लेशियर गिर जाता है, कितने सारे संकट आते हैं प्रकृति की ओर से। तो एक आध्यात्मिक क्लेश है जो अपने द्वारा प्राप्त होते हैं, एक आदि भौतिक क्लेश है जो दूसरों जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, और एक आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा हमारे लिए प्राप्त होते हैं। बता रहा हूँ, वही बताऊंगा। ये जो निर्माण हुआ है इसकी प्रधानता क्या है, इसलिए नाम क्या दिया गया उसको, मृत्यु लोक। इसको कहा गया है क्या सुख लोक, आनंद लोक, खुशबू लोक, ऐसा कहा गया? नहीं कहा गया, क्योंकि इसका जो निर्माण करता है उसने कहा है कि माम उपेत्य तु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, मैंने इसका निर्माण किया है, भगवान बोलते हैं। और वो कैसे बोलते हैं कि मैं निर्माण करता हूं और बता रहा हूं आपको इसका क्या खासियत है। वो कहते हैं अशाश्वतम, जो शाश्वत नहीं है, मतलब जो खत्म होने वाला है, जिसकी शुरुआत है और अंत है। और दुखालयम, उसको ऐसा नहीं कहा है कि सुखालयम अशाश्वतम, ऐसा नहीं कहा गया, या दुखालयम शाश्वतम, ऐसा भी नहीं कहा गया। साथ साथ में वो अशाश्वत है और जितना भी टाइम रहता है वो भी दुख से भरा हुआ है। अभी कोई आपको बताएगा कि भाई आपके पास रेफ्रिजरेटर आपने खरीदते हैं हिंदू गोदरेज का, तो उसकी किताब साथ में आएगी और उसमें लिखा है कि ऐसा ऐसा इसमें चिल्लर ट्रे में ये रखना है, फिर यहाँ पर बर्फ़ होगी, यहाँ पर नीचे टेम्परेचर ये होगा, सब्जी यहाँ रखनी है और बर्फ़ होना है तो ऊपर रखना है और बटर ऊपर रखना है, ऐसा बहुत सारा नियम होता है। और आप अपना केक जो है बनाने का, केक होता है ना, तो उसका आटा बनाएंगे और उसको फ्रिज में रख देंगे और बटन चालू कर देंगे और 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, केक तो पकता ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया, मैंने बटन तो ऑन कर दिया है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि ये मशीन जो है वो ठंडक पैदा करती है, जब उसको आप ओवन में डालेंगे तो उसका केक जो है वो बन जाएगा। तो ओवन में बर्फ नहीं बन सकता है पानी का, तो फ्रिज में केक नहीं पक सकता है ओवन जैसा। ये मेकर का आपके लिए ऑर्डर है, तो जिसने बनाया हुआ है ना मैन्युफैक्चरर, उसका मैनुअल दिया है उसने कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ही होता है, वो वही बिजली है, लेकिन जब वो फ्रिज में घुसती है वो ठंडक पैदा कर देती है, और वही बिजली जब ओवन में घुसती है तो वो हीट पैदा कर देती है 120 डिग्रीज 150 डिग्रीज, जो केक ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक होता है। उसी तरह से ये दुनिया का जो मैन्युफैक्चरर है भगवान, वो बता रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। उनके जो प्रतिनिधि है जीसस क्राइस्ट, वो भी कहते हैं कि इस दुनिया में अगर सुखी होना है तो इस दुनिया में सुखी होने का प्रयास करना छोड़ दो। बहुत गहरी बात है ये, बहुत सोचो आप इसी तरह से, बहुत गहरी बात है। इस दुनिया में अगर सुखी होना है तो इस दुनिया में सुखी होने का प्रयास करना छोड़ दो, क्योंकि इसमें सुख की कोई गुंजाइश भगवान ने बनाई नहीं है। जो भी आप जो कह रहे हैं सुख भी मिलता है, वो जब दुख नहीं होता है तो जो स्थिति होती है उसको हम सुख कहते हैं। ये रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब सापेक्ष कल्पना है ये। आनंद ये पॉजिटिव कल्पना है, एब्सोल्यूट कंसेप्ट। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। दुख का अभाव होना इसको हम सुख कहते हैं। चलो आज पेट में दर्द भी नहीं हो रहा है, सर भी नहीं दुख रहा है, नींद भी अच्छी आई है, तो आज लगे हम सुखी हैं। हाँ, जैसे और एक उदाहरण संत लोग देते हैं। हाँ, हम संतों का उदाहरण का आपको यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आपने अगर पानी में ऐसा डुबो दिया और 2 मिनट रखा, तड़पेगा ना अंदर वो, फिर आपने उसको 1 सेकंड के लिए बाहर निकला, उसने एक सुख की सांस ले ली बाहर आके, बोला कितनी सुख की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपका दुख का अनुभव हो गया, जब दुख का अंत हो गया तो आपको लगेगा कि सुख हो गया है। लेकिन आत्मा की सुख की जरूरत जो है वो ऐसी नहीं है। आत्मा के सुख की जरूरत है वो एब्सोल्यूट है, उसको परम सत्य कहते हैं। एनीवेज, मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि जैसे ही हम शरीर को धारण करते हैं, काल का प्रभाव हमारे ऊपर लागू होने लगता है। इसलिए हम 2 घंटे के बालक को भी क्या कहते हैं, 2 आवर्स ओल्ड, जैसे क्या बोलते हैं, 2 आवर्स यंग, 2 मंथ्स यंग, 10 ईयर्स यंग, फिर 50 ईयर्स के बाद में 51 ईयर्स ओल्ड, ऐसा बोलते हैं क्या। जीवन जब प्राप्त होता है, जन्म होने के समय, उसी समय से काल आपके जीवन से जीवन शक्ति लेना आरंभ कर लेता है। कुछ समय हमको लगता है कि हम जवान हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारी वृद्धि हो रही है, शरीर भी बढ़ रहा है, मन का विकास भी हो रहा है, सब कुछ, बुद्धि का विकास हो रहा है, लेकिन जन्म से जीव की मृत्यु की ओर जो यात्रा है वो बड़ी तेजी से और बड़ी क्या कहते हैं इसको, स्टेडीनेस, बहुत संत गति से चलती रहती है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज स्टेडीली दैट पर्सन प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स डेथ। जिस गति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई स्लो नहीं कर सकती है, कोई फास्ट नहीं कर सकती है, हाँ, उसका कंट्रोल जो है ऊपर वाले के हाथ में है। और समय पर हम जवान होंगे, समय पर मिडिल एजेड हो जाएंगे, मध्यम वयन हो जाएंगे, और समय पर बीमार पड़ेंगे और बूढ़े होकर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस गति को आज तक कोई रोक नहीं पाया है। इसलिए जब हम पूछते हैं गवर्नमेंट को कि डेथ रेट क्या है आज का, तो कुछ बोलते 78%, कुछ बोलते 80%, जो बोलते इथियोपिया में 58% है खाली, लेकिन असली डेथ रेट क्या है? यस 100%। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, जो जन्म लेता है वो निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब क्या हो गया, 100% डेथ रेट हो गया ना। यह हमको समझना बहुत जरूरी है। आदमी कितना भी शक्तिशाली हो, समय के साथ उसकी शक्ति हीन होते हुए नजर आती है, आती कि नहीं आती? हमारे पिताजी का उदाहरण है, हमारे पिताजी सिंह की तरह थे, मैंने देखा उनको बचपन में, कितने उनमें हो हिम्मत थी, कितना जोश था उनके अंदर, निर्णय शक्ति थी उनके अंदर, संकटों का सामना करने की शक्ति थी, बड़ा आत्मसम्मान था उनके अंदर, स्वाभिमान था। लेकिन जब वो 70 साल के हो गए तो सारे ये सब चीज़ें खत्म हो गई उनके अंदर। एकदम जो आत्मसम्मानपूर्ण व्यक्ति था वो एकदम निर्भर हो गया किसी के ऊपर, डरने लगा। बीमारी आते ही जब आखिरी बीमारी हो गई तो निर्णय शक्ति खत्म हो गई, कुछ सोचने का हिम्मत खत्म हो गई, खड़ा रहने की हिम्मत भी खत्म हो गई, चलने की शक्ति भी खत्म हो गई, तो कुछ भी करने में उनका जो आत्मविश्वास था वो सब खत्म हो गया। तो मुझे लगा अरे क्या समय का प्रभाव है, देखो हमारा हमारे लिए आदर्श, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत थे हमारे पिताजी, आज भी हैं, लेकिन हमने देखा कि समय जैसा आज होता है वो आदमी सब कुछ छीन लेता है, उसकी बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति, हाँ उसकी निर्णय शक्ति, उसका आत्मसम्मान, उसका स्वास्थ्य, उसकी पोजीशन का पावर, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव, सब कुछ उसके तरफ से समय छीन लेता है। इसलिए कहा गया कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो उसके पास जो वस्तुएं हैं उस पर गर्व नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि आज वो मेरे पास वस्तु है, कल जाने वाली। यही भक्ति मार्ग का एक प्राप्ति है हमारे लिए। जब कोई भक्ति मार्ग में आता है तो वो समझता है सत्य को कि किसी भी चीज पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ क्या है ना, इट इज लैंडेड टू यू, मतलब आप पे कर्जा है, वो किसी ने दिया है, किसी को वापस लौटाना है, हमारा कुछ नहीं है उसके अंदर, शरीर भी हमारा नहीं है। अगर शरीर हमारा होता तो हम उसको रोकते बूढ़ा होने से, हाँ हमारा है वो, हमारे कंट्रोल में है, तो हम उसको बूढ़ा होने को रोकेंगे, हम बीमार होने से रोकेंगे, उसको मरने से रोकेंगे, या अगर हमारी नाक सही नहीं तो उसको सही कर देंगे, उसको कि हमको हमारी नाक ऐसी लगती, अच्छी लगती नहीं, हमको सही सही है तो हम उसको चेंज करेंगे, हमारे आँखों का शेप चेंज करेंगे। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं, शरीर के अंदर एक भी कण भी आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम कोई वस्तु खाएंगे तो मुंह में डालने तक आपको इंडिपेंडेंस है, लेकिन मुंह में डालने के बाद निकल देंगे, अरे नहीं गलती हो गई, अरे इसको बाहर निकालो, नहीं जा सकते, तुरंत नीचे ही जाएगा, वो अपने कंट्रोल के बाहर जाएगा। तो स्वतंत्र होने का आभास यहां पर है, लेकिन यहां हम लोग पूरी तरह से परतंत्र हैं। अभी मैं बैठा हूं, मेरे स्टमक में क्या पचन हो रहा है, मेरे आंतरी में क्या शोषण हो रहा है अन्न का, मेरे हृदय में कैसा स्पंदन हो रहा है, मेरे सांस में कैसा उच्छ्वास श्वास निकल रहा है, किस पर भी मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि मैं कितना इंडिपेंडेंट आदमी हूं, अपनी मर्जी से काम करता हूं। ऐसा नहीं है, हर वस्तु हम, हर कार्य हमारा जो है वो समय के प्रभाव में है। आज सब कुछ ठीक है तो अच्छा हम कुछ बोल पा रहे हैं, कल वही ऐसा समय आएगा, बुखार आएगा, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम सोचेंगे बहुत बड़ा प्लानिंग करेंगे, कल हम कुल्लू मनाली जाएंगे, वहां पर सेमिनार देंगे, फिर उसके बाद में हम दिल्ली जाएंगे, वहां पर हमारा सेमिनार होगा, उसके बाद 4 दिन छुट्टी लेंगे, परिवार के साथ में हम बद्रीनाथ में घूमने चले जाएंगे। जब तक नियति का सैंक्शन है तब तक ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन अक्सर हमारे प्लान्स जो है वो बदलते हुए नजर आते हैं। कल ही मैं एक विशेष व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने कहा था कि हमारे ऊपर ऐसे अनेक नियंत्रक बैठे हुए हैं, सबसे पहले ग्रह हैं, उसके ऊपर देवता हैं, उसके ऊपर स्वयं भगवान है, और हमारे पूर्व कर्म जो है वो हमको नियंत्रित करते रहते हैं, हमारी इच्छाएं हमको नियंत्रित करते रहती हैं, हाँ हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे अभी प्राइम मिनिस्टर बनना है। भारत में कितने लोग होंगे आपको पता है ना, कितने लोग ऐसे वो सपना देख रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन बनता केवल एक ही है, बाकी सब लोग दुखी हो जाते हैं, और जो बना है वो भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो कभी निकलेगा उस पोजीशन से उसको पता नहीं, कितने लोग उसके ऊपर शरसंधान करते रहते हैं, हमेशा उसको परेशान करते रहते हैं। जो बना हुआ है वो भी दुखी है, जो नहीं बने वो भी दुखी है, जिसको नींद आ रही है वो भी दुखी है, जिसको नींद नहीं आ रही है वो भी दुखी है, कारण क्या है, हम सब लोग समय के प्रभाव में, कितना भी कोशिश करेंगे, कितना भी योग करेंगे, कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, कितना भी डाइट खाएंगे, अच्छी तरह से बढ़िया श्रेष्ठ अन्न खाएंगे, फिर भी काले के बाल सफेद हो जाएंगे एक दिन। ये समय का प्रभाव को हमको पहचानने को सीखना चाहिए। जो इसको पहचानता है वही जीवन में यशस्वी हो जाता है। इससे हम कैसे बचें, क्योंकि समय, भगवान कहते हैं कि कालोस्मी, काल मैं हूं, आपसे समय के रूप में सब कुछ मैं छीनता हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। तो आपको लोग अगर भगवान कितने दुष्ट हैं, कितने क्रूर हैं, हाँ ये राक्षस के समान है, हमसे सब कुछ छीनता कौन है, राक्षस या डीमन या डेविल, सब हमारे अच्छी वस्तु सब छीन लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कालोस्मी जो भगवान कह रहे हैं, जो लोग उनके नियम का पालन नहीं करते हैं उनसे वो सब कुछ छीन लेते हैं जो अपना समझते हैं, जो उनके भक्त बन जाते हैं उनको वो अपने धाम में लेके जाते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ का जो काल है वो आपके जीवन में से यौवन, स्वास्थ्य, धन दौलत, बुद्धि सब कुछ छीन लेगा, स्मरण शक्ति सब कुछ छीन लेगा। लेकिन एक और काल भगवान का स्वरूप है जो आध्यात्मिक जगत में है, वहां पर वो काल जो है कुछ नहीं छीनता आपसे, बल्कि आपको सब कुछ देता है। भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, चिरंतन जीवन, ज्ञान, आनंद, आनंद की पूर्ति सब कुछ वहां पर दे देता है। फर्क केवल जगह का है, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में हैं, उसका प्रभाव अलग तरीके से हो रहा है। जैसे बिजली एक ही है लेकिन जब वो रेफ्रिजरेटर में घुसती है वो ठंडक पैदा कर देती है, ओवन में घुसती है तो हीट पैदा कर देती है। बिजली वही है, समय भी वैसा ही है। जब वो भौतिक जगत में प्रभावित होता है, प्रभाव देता है, तो सब कुछ छीनते हुए नजर आता है। और जब वो आध्यात्मिक जगत में उसका परिणाम देखते हैं तो वो जीवन दान, आनंद दान, चिरंतनता, अमरता सब देता है। तो चॉइस हमारा है। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि तुमको मैंने सब कुछ बता दिया, सब प्रकार के मार्ग बता दिए, अभी चुनना तुम्हें है, करना है नहीं करना है, पालन करना है, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, स्वीकार करना है नहीं करना है, ये सब तुम्हारे हाथ में है। क्या करने से क्या परिणाम होगा, क्या करने से क्या परिणाम नहीं होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अर्जुन ने अगर वो कहते कि मैं, आपने जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मुझे विश्वास ही नहीं इसके ऊपर, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो उसका परिणाम भी उसको पता था। तो वो क्या कहते हैं, नष्ट मोहो स्मृतिर लब्ध्वा करिष्ये वचनम तवा। अब मेरा जो स्मृति भ्रंश हो गया था वो नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट के आई है कि मैं कौन हूं, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा आपसे रिश्ता क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मेरी स्मृति जो है वो लौट के आई है दोबारा। स्मृति लब्ध्वा, उसका लाभ मुझे हुआ है, प्राप्ति हो गई उसकी। नष्ट मोहो मतलब मेरा जो मोह था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं फलाना हूं, ये सब गलत था, ये मोह जो है नष्ट हो गया है। मोह का मतलब क्या है, अपने आप को शरीर समझना, उसको मोह कहते हैं। मैं अपने आप को किसी परिवार का समझ रहा था, किसी का रिश्तेदार समझ रहा था, कोई मेरे चाचा है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, कोई परिवारजन है, कोई आप्तजन है, कोई शत्रुजन है, ऐसे मेरा विचार था। वो मोह अभी आपके ज्ञान से नष्ट हो गया है। तो ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो समय के प्रभाव को आपको समझा सकती है कि समय कैसे आप पर काम करता है। वो ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने दिया है, भागवत जी में दिया है, बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने दिया है, मोहम्मद ने कुरान में दिया है, सभी संतों ने अपने अपने वचनों में दिया है, उपदेश में दिया है, जो हमको समझाते हैं कि क्या है ये वस्तु। भगवान, उनकी शक्ति, काल, त्रिगुण, सृष्टि, जीव, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब क्या है, ये हमको सिखाता है। और ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान जो है ये केवल मनुष्य के शरीर में हम समझ सकते हैं। और कोई भी ऐसा शरीर भगवान ने बनाया है जिसमें ये सुविधा नहीं बनी है। हरे कृष्णा। सबको विनती है कि अपना मोबाइल जरा स्विच ऑफ करके रखिए एक घंटे के लिए। तो मैं क्या कर रहा था कि ये शक्ति का जो प्रभाव है उन ज्ञान से हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही एक शरीर है जिसमें सुविधा भगवान ने दी है, बाकी किसी शरीर में ये सुविधा नहीं दी है। क्योंकि यहाँ पर इंसान बैठे हुए हैं, हम इस पर प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन अगर कुत्ता, बिल्ली, पंछी बैठे होते तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी प्रवचन करेंगे तो कुछ ध्यान में नहीं आएगा उनके, क्योंकि ये यंत्र में हमारी सुविधा भगवान ने दी है, इसको मनुष्य यंत्र कहते हैं। ये बड़ी भाग्य की बात है। इस पर भी समय का प्रभाव है लेकिन उस पर उस समझ समय को समझने का भी सुविधा दिया गया है, उतना इंटेलिजेंस बुद्धि को दिया गया है। इसलिए हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें जीवन में करना क्या है। अगर हम समय के अधीन हैं, अगर समय के द्वारा हम हर वस्तु को खोने वाले हैं, तो फिर करना क्या है? समय केवल वो वस्तु को चिंता है जो भौतिक होती है। समय हमसे आध्यात्मिक वस्तु छीन नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा परम वाक्य है जो हमने संतों से सुना हुआ है। जो केवल भौतिक है, भौतिक का मतलब क्या है, जो भगवान की सेवा में नहीं है, वही समय छीन लेता है। शरीर जो है अगर भगवान की सेवा में लगता है तो वह आध्यात्मिक बन जाता है। फिर इस शरीर को खोते ही आपको आध्यात्मिक शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, माया की सेवा में लगाएंगे, तो ये शरीर समाप्त होते ही दूसरा शरीर प्राप्त मिलेगा आपको, इसी दुनिया का मिलेगा। और भगवान कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं, आद्यंतु वंतु कौन्तेय न तेचु रमते बुधः। इसका अर्थ क्या है कि जिस वस्तु की या जिस चीज की शुरुआत है और जिसका अंत है, उसमें बुद्धिमान व्यक्ति रस नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा की जरूरत क्या है, चिरंतन वस्तु को प्राप्त करना, यानी कि भगवान, यह आत्मा की जरूरत है। लेकिन उसको छोड़कर इस दुनिया की जो वस्तुएं हैं, जैसे शरीर का भोग है, खाने का आनंद है, पहनने का आनंद है, सम्मान का आनंद है, हाँ, पद का आनंद है, प्रमोशन का आनंद है, या और कहीं खाने पीने के, शरीर के सुख के आनंद है, ये सब शुरू होते हैं और अंत हो जाता है। आप किसी भी अंत के आनंद को देखिए, समझा, आपने गुलाब जामुन को बहुत पसंद आता है, आपने पहला खाया, आपको बहुत भूख लग रही थी, तो आपको बहुत आनंद आएगा, फिर आप दूसरा खाएंगे, फिर भी आपको आनंद आएगा, लेकिन पहले से कम आएगा, फिर तीसरा खाएंगे, फिर पांचवा खाएंगे, आठवां खाएंगे तो बोला बस, अभी आठवें के बाद आप कहेंगे कि अभी जो नया बैच आ रहा है ना, और ये गुलाब जामुन का, ये घी में बनाया, मावे का बनाया, बहुत बढ़िया है, फिर भी आप उसको खा नहीं पाएंगे, अगर खाएंगे तो आपको दस्त लग जाएंगे, है ना, वही गुलाब जामुन। क्या हो गया, समय बदल गया। पहले हम जब से भूखे अवस्था में थे, अभी पेट भरे की अवस्था में हैं, तो वो वस्तु आपको आनंद नहीं देगी। नए घर में जाएंगे, पहले महीने में कितना खुशी होगी आपको, हर रोज सोचेंगे, अरे मैं कब घर जाऊंगा, कब मेरे बेडरूम में सोऊंगा, कब मेरे बाथरूम में स्नान करूंगा। वही घर 5 साल के बाद में हमको बोर होने लगता है, मतलब कोई नए घर में जाना चाहिए, बदले होना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते उसको। एक नई पैंट लिया और शर्ट लिया या कुर्ता ले लिया तो कितना पहले हम देखते, अरे कहीं जगह पर गंदगी तो नहीं है, साफ करके बैठेंगे। 6 महीने के बाद में क्या करेंगे, कहीं भी बैठेंगे। जूते का भी ऐसा ही होता है, मतलब हर चीज के अंदर कुछ कुछ हमको सुख का आभास है, लेकिन समय उसमें से उसी सुख को आपसे छीन लेता है। इज दैट ट्रू? सबका अनुभव है आप लोगों का। नई नई शादी होती है तो कितना हमको आनंद आता है, हमको स्वर्ग में रह रहे हैं। इस जीवन में इससे बड़ा क्या हो सकता है, इतनी बड़ी खुशियां, इतना आनंद और क्या हो सकता है। 5 साल के बाद मिली उनको आप फिर आपको पूरी नई कहानी पता चलेगी, कैसा था, क्या बड़ी गलती की हमने, कौन सी मनहूस घड़ी में ये हमारा विवाह हो गया, हाँ, विनाश का हमने बीज बो लिया उस दिन, ऐसा लगता है ना हमको। क्योंकि वो वस्तु ऐसी है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो भौतिक वस्तु है, भगवान की सेवा में नहीं है। वही विवाह को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, उस संबंध को, तो आपको पति पत्नी जो है हमेशा आनंदित नजर आएंगे। हमारे बीच में जब भगवान होंगे, श्री राम होंगे, श्री कृष्ण होंगे, तो हमारे सारे वस्तुओं को, सारे कार्यों को आध्यात्मिकता और चिरंतनता प्राप्त हो जाएगी। जैसे माइक्रोफोन है, इससे हम बोल रहे हैं, है ना, इसमें डिस्को गाना भी गा सकते हैं, इसमें सेक्स का गाना भी गा सकते हैं, रोमांटिक गाना भी गा सकते हैं, देशभक्ति का गाना भी गा सकते हैं, और भगवान के बारे में बोल सकते हैं। जब तक ये भगवान के बारे में बोलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये माइक्रोफोन आध्यात्मिक है। और जैसे ही इसके अलावा किसी भी वस्तु पर, समाज सेवा, देशभक्ति और रोमांटिक कोई भी गाएंगे, वो सब भौतिक है। क्योंकि देशभक्ति भी टेम्पररी है। क्यों? आज आपका शरीर, भारत शरीर, वर्ष में किसी परिवार में जन्मा हुआ है, इसलिए वो भारतीय कहलाता है। अगले जन्म में आप अमेरिका में जन्म लेंगे तो आप अमेरिकन हो जाएंगे, अगले जन्म पाकिस्तान में जा सकते हैं, वी डोंट नो, तो आप शत्रु कहेंगे भारतीय लोगों को। हाँ, दिस इज ऑल फैक्ट। आज हम काले लोगों को शायद बहुत घृणा करते हैं उनकी, कल हम काला शरीर प्राप्त करेंगे तो गोरे लोगों को घृणा करेंगे, वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद, कितने भेद है दुनिया में, ये सब समय का प्रभाव है। जब हम से समझेंगे कि हम भगवान के अंश हैं तो ये सारे भेद नष्ट हो जाएंगे, और जब तक ये शरीर में अंदर रह रहे हैं समय का प्रभाव रहेगा, लेकिन आप उस समय के प्रभाव के परे चले जाएंगे। इसको कहते हैं त्रिगुणातीत, ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, टू ट्रांसेंड द इफेक्ट ऑफ टाइम, समय के प्रभाव के परे चले जाना। और यही अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि ऐसी एक दुनिया है, ऐसी एक स्थिति है जो समय के प्रभाव के परे है, तीन गुणों के प्रभाव के परे है, जहां पर मैं रहता हूं और आप भी वहां रह सकते हो, और मेरी भक्ति को अपनाकर इस जीवन में जीते हुए भी उस स्थिति में आप रह सकते हो। उसका मतलब क्या है, समय के प्रभाव से आपको बीमारी होगी, बुढ़ापा आएगा, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, आपकी भक्ति, सेवा और भगवान से संबंध आप बनाए रखेंगे। ये अवस्था मुमकिन है, ये मत समझना कि अवस्था मुमकिन नहीं है। हम बोले ऐसे कैसे प्रभु जी, आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं आज इस अवस्था में हूं, कल बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, हर अवस्था में अगर भगवान की स्मृति में और भगवान की सेवा में लगा रहूंगा तो इन स्थितियों का परिणाम और प्रभाव मेरे मन पर नहीं होगा, और हर अवस्था में मैं आनंद में रह सकता हूं। यही भक्ति की शक्ति का प्रभाव है। भक्ति की शक्ति जो है वो समय की शक्ति से भी बलवान है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या चुनना है हमारे हाथ में, ज्ञान भगवान दे रहे हैं हमको कि क्या क्या चीज है, किस चीज का क्या गुण है, ये सब भगवान हमको वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से स्वीकारना क्या है ये हमारे हाथ में। केवल सुनकर हम छोड़ भी सकते हैं, चलो सुनने छोड़ लिया, प्रवचन में अच्छा लगा सुन लिया छोड़ लिया, प्रभाव हमसे छूटेगा नहीं, प्रभाव हम पर होते रहेगा उस चीज का। बुद्धिमान व्यक्ति वो है वो समझता है कि मैं समय के प्रभाव में हूं, मुझे इससे छूटना है, और मैं छूटने के लिए निश्चयबद्ध हूं, मैं जरूर छूटूंगा इससे, किसी का भी सहारा लूंगा, संत का, और समय के प्रभाव से छूटने का प्रयास करूंगा। तो भगवान का नाम जो है ये समय के प्रभाव के परे है, भगवान का जो विग्रह है समय के प्रभाव से परे है, भगवान का अस्तित्व है समय के प्रभाव से परे है, तीन गुणों से परे है, और हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है। आज हम लोग समय के प्रभाव में कभी सत्वगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं, हाँ सवेरे के समय आपको मित्रता का भाव मन में आएगा, शांति अनुभव होगी, सूरज ऊपर आने के बाद तुरंत हम लोग काम में जाएंगे, धन कमाने के पीछे भागेंगे, कुछ रजोगुण के पीछे पैशनेट बन जाएंगे, और रात के समय पे चोर जो है वो चोरी के विचार मन में आएंगे, उसको गलत विचार आएंगे, नशे वाले चोरी डकैत जो है रात में वो एक्टिव हो जाते हैं, ये भी समय का प्रभाव है। भजन करना है तो रात को भजन नहीं कर सकते, सुबह अच्छा भजन हो जाता है ना, और धन कमाना है तो दिन में सूर्यास्त, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये कार्य करने के लिए दिन का जो है, स्कूल जाना है, काम करना है, खाना बनाना है, कपड़े बनाने, कपड़े धोने, ये सब काम जो है उस समय होता है, और रात का समय जो है तमोगुण यानी कि निद्रा, आलस्य या गलत काम, बलात्कार, डकैती, ये सब जो काम है वो रात में होते हैं, खून खराबा, डकैती, ये सब काम रात में होते हैं। इसके परे भी हम जा सकते हैं अगर भगवान की सेवा में है, तो वो भगवान का भक्त जो है वो रात को 12 बजे भी एकदम ध्यान लगा के भजन कर सकता है। यही भक्ति का रहस्य है। भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है वो भक्ति के माध्यम से, भक्ति के प्रभाव से ही समय के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस जीवन में रहते हुए भी उस व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं, शरीर में होते हुए भी वो इस प्रभाव से मुक्त रहता है। इस स्थिति का वर्णन भगवान भगवद गीता में करते हैं, और केवल ऐसा नहीं कि थियोरेटिकल बता रहे हैं आपको खाली अच्छा लगने के लिए, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है, इसी को समझा रहे हैं कैसे उसको हम लोग जीवन में उतार सकते हैं। तो अब थोड़ा भगवान के नाम के विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान का नाम तीन गुण के परे है, भगवान का नाम दिव्य अवस्था में है, भगवान का नाम समय के परे है, और जैसे ही हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो तुरंत ही शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इस सभी स्थितियों को पार करके वह दिव्य स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेता है। और शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों स्थितियां जो है, चारों जो दर्जे हैं, चारों लेवल्स हैं, वो समय के प्रभाव में रहते हैं और तीन गुण के प्रभाव में रहते हैं। समय के अनुसार दोलायमान होते हैं, बदलते रहते हैं। हाँ, पैसा आया तो खुश हो जाएंगे, पैसा लुट गया कहीं खो गया तो दुखी हो जाएंगे। इसको कहते हैं दोलायमान अवस्था। ये निर्भर अवस्था है। सम्मान मिला तो खुश हो जाएंगे, बदनामी हो गई तो दुखी हो जाएंगे। एग्जाम में बड़े अंक से पास हो जाएंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, और कम अंक मिलेंगे तो दुखी हो जाएंगे। आज बहुत परेशान है हम लोग, और आपने आके कुछ हल्की सी कुछ बात कर ली एकदम भड़क जाएंगे आप, और कल शांत रहेंगे। अरे मैं क्यों इतना भड़का कल, कोई बड़ी बात तो हुई नहीं थी। ये जो अवस्था है ये समय का प्रभाव है। आज आपको सर दर्द हो रहा है तो आपको जरा सा कोई गाना भी लगा गया तो आपको सर दर्द दुखेगा, और आप स्वस्थ हैं तो 60 डेसिबल के ऊपर भी कोई म्यूजिक लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप नाचने लगेंगे उसके अंदर। ये सब समय का प्रभाव है। लेकिन भगवान का नाम जो है वो उसकी इतनी खूबी है कि तत्क्षण यानी कि ऑन द स्पॉट उसी क्षण में, जिस क्षण आप उसका नाम लेंगे, पुकारेंगे उनको, उसका स्मरण करेंगे, उस क्षण के लिए क्यों ना हो, तत्क्षण आप शरीर मन बुद्धि अहंकार इस स्थितियों को पार करके आत्मा के स्थिति पर अपने आप को पाएंगे। और चूंकि आत्मा चिरंतन है, आत्मा सच्चिदानंद है, तुरंत सच्चिदानंद अवस्था का अनुभव करेंगे। कुछ समय के लिए क्यों ना हो लेकिन करेंगे, और अगर अधिक समय करेंगे तो अधिक समय उस अवस्था का अनुभव करेंगे, और लगातार करते रहेंगे निरंतर। अहैतुकी अप्रतिहता ऐसे कहा गया उसको, तो हमेशा उसी स्थिति में रहेंगे। उसको कहते हैं स्टेइंग हाई फॉर एवर। हाँ, एक शराबी एक नशा करने वाला क्या सोचता है, लेट मी स्टे हाई फॉर एवर। लेकिन उसको कुछ समय के बाद में हाई से लो होना पड़ता है, आना पड़ता है। जैसे ड्रग का प्रभाव नष्ट हो जाता है वो तुरंत हैंगओवर में आता है, जो हाई से भी अधिक तकलीफ देने वाली स्थिति होती है। लेकिन भगवान का नाम आपको ऐसी स्थिति में लेके जाएगा जो हमेशा के लिए आपको उस स्थिति में रख सकता है। उसमें श्रद्धा लगन अभ्यास की आवश्यकता है, और ये मुमकिन है, हमको कोई नामुमकिन नहीं है। हर एक व्यक्ति जो मनुष्य शरीर में जन्म लिया हुआ है वो भगवान का नाम का आश्रय लेकर अपने आप को समय के प्रभाव के परे प्राप्त कर सकता है। और जैसे ही हम त्रिगुण के परे चले जाते हैं वहां भगवान का मिलाप होता है, क्योंकि सत्व रज और तमोगुण भौतिक जगत में है, विशुद्ध सत्व गुण जो है वो भगवान का गुण है जो भगवान के धाम में रहता है। विशुद्ध सत्व उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मोड, मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण एंड ट्रांसेंडेंटल मोड, इन तीनों के परे विशुद्ध सत्वम। विशुद्ध सत्वम इस गुण में भगवान निवास करते हैं, और जैसे ही हम भगवान के नाम के सहारे से इस विशुद्ध सत्व गुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं वही भगवान से हमारा मिलाप होता है। कुछ समय के लिए रहते हैं कुछ समय के लिए मिलाप होगा, बहुत समय रहेंगे तो बहुत समय मिलाप होगा। और जैसे हम उस स्थिति में जाएंगे तो उस स्थिति के कई और गुण हैं, उस स्थिति में कोई समय का प्रभाव नहीं होता है, उस स्थिति में आनंद का ह्रास नहीं होता है, उस स्थिति में दुख का अनुभव नहीं होता है। आपका शरीर रोगग्रस्त है लेकिन आत्मा अगर उस अवस्था में है तो शरीर की पीड़ा आपको स्पर्श नहीं करेगी। इसी को समय के प्रभाव के परे जाना कहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का एक एक अनोखा लाभ है। हम हमेशा अपने हॉस्पिटल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते रहते हैं, टू स्टे ब्लिसफुल इन द मिडल ऑफ द वर्स्ट मिजरीज ऑफ लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब भौतिक स्तर से आप बहुत दुखी और पीड़ित और परेशान हैं, कष्ट में है, पीड़ा में है, लेकिन उस अवस्था में होते हुए भी हम दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं, यही भक्ति है। इसी को साधना भक्ति, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति कहते हैं। इसको अपनाने से आदमी कैंसर से पीड़ित है, उसको इतना दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत बढ़िया भगवान का कीर्तन कर रहा है और मजे में भगवान का नाम पुकार रहा है। इसको और एक शब्द में तुरिया अवस्था भी कहते हैं। तुरिया अवस्था मतलब शरीर की अवस्था के परे की अवस्था, जो आत्मा की अवस्था है। तो क्यों ना हम ऐसे दिव्य प्रक्रिया को अपनाएं जीवन में। ये सब हमारे लिए है, पंछी कुत्ता बिल्ली जानवर के लिए नहीं है, इंसान के लिए है। ये सारे योग की प्रक्रिया, भक्ति मार्ग की प्रक्रिया, त्रिगुणातीत होना, दिव्य गुण का अनुभव करना, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण लीला, ये सब मनुष्य के लिए है और किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। एक ही ऐसी योनि है जिसमें ये सब भगवान ने सुविधा दे के रखी है। सब प्रकार के ज्ञान, सब प्रकार का क्रिया, सब प्रकार का चॉइस केवल मनुष्य कर सकता है। अपने कर्मों को बदलना यह भी मनुष्य के हाथ में, कुत्ता बिल्ली के हाथ में नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही करना है उसको, और कुछ नहीं कर सकता है। भूख लगेगी तो खाना खाएगा, थक जाएगा तो सो जाएगा, पेट भरा हुआ है सब कुछ ठीक है, मादी को देखेगा तो सेक्स करेगा, वो संकट आएगा तो रक्षा करेगा, बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही काम है उसका। लेकिन मनुष्य के जीवन में इसके परे जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य जो है ये भक्ति का कार्य है। तो आपको मैं विनती करूंगा इस बात को समझने के लिए कि समय के प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक हम भगवान का शरण नहीं ले सकते। भगवान के शरण लेंगे उस समय समय का जो पंजा है ना हमारे ऊपर, वो हमसे हट जाएगा। यही हमको जीवन में समझना है, और ये समझेंगे तो अगर हम अभी बूढ़ी अवस्था में होंगे या जवान अवस्था में होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तो शरीर तो नश्वर है, आज जवान है तो कल बूढ़ा हो जाएगा, आज स्वस्थ है तो कल बीमार हो जाएगा, ये निश्चित बात है ना, कोई कह सकता है क्या? अपना फोटो निकाल के देखिए आप, 5 साल की उम्र का, 10 साल की उम्र का, स्कूल का फोटो निकाल के देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, हाँ, आज का फोटो देखिए बहुत अंतर है, और 10 साल के बाद में देखिए और अंतर आएगा, 20 साल के बाद देखिए और अंतर आएगा, और 30 साल के बाद तो फोटो को देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आँख की दृष्टि भी ओझल हो जाएगी, है ना, दृष्टि, श्रवण, स्मरण शक्ति, हजमे की शक्ति, चलने की शक्ति, हाथ पकड़ने की शक्ति, उठने की शक्ति, सब अपने से निकल जाने वाला है। उस अवस्था को, उस सत्य को याद रखते हुए जीवन को चलाना है, मतलब नम्र बनना है, समझना है कि आज हम लोग बड़े शक्तिशाली है, बहुत गर्व कर रहे हैं, लोगों को दो रोप डाल रहे हैं उसके ऊपर, गलत कार्य कर रहे हैं अपने यौवन और शक्ति के बल पर, लेकिन वही व्यक्ति कुछ समय के बाद में एकदम आत्मनिर्भर, पूरा निर्भर हो जाएगा पराए व्यक्ति के ऊपर। इसलिए यश भी है कुछ समय के लिए, कीर्ति भी है कुछ समय के लिए, प्रभाव भी है कुछ समय के लिए, शरीर के सर पर कुछ निश्चित नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। तो क्यों उसको अपना समझे नंबर वन, और क्यों उस पर गर्व करें जो समय के साथ नष्ट होने वाला है और जो हमारा नहीं है, उस पर गर्व कैसे कर सकता है? एक केवल मूर्ख व्यक्ति कर सकता है जिसको पता नहीं है कि वो उसका है नहीं। भगवान का भक्त नम्र क्यों होता है? क्योंकि वो समझता है कि मेरा तो है ही नहीं है, इस पर गर्व करने का सवाल ही नहीं उठता है, जिसका दिया हुआ है उसी का है और उसी की सेवा में लगाना है, तभी इसकी परिपूर्णता होती है। जो अपना समझेंगे, अपनी सेवा में लगाएंगे तो नुकसान ही होगा, अपने हाथ से वो छीना जाएगा, और जिसने दिया हुआ है उसकी सेवा में लगाएंगे तो परिपूर्ण हो जाएगा, और उसी के माध्यम से हम उसके पास चले जाएंगे जिसके पास से हमको शरीर प्राप्त हुआ था। मतलब बोट जैसा है, किसी ने बोट दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे, नाव नदी को पार करेंगे तो जिसने बोट दिया था उसी को मिलेंगे, वही हमारा सहारा है, एकमात्र सहारा वही भगवान है, जिसके हम अंश हैं, चाहे हम आज मनुष्य के शरीर में हैं या किसी और शरीर में हैं, या जवान शरीर में हैं या बूढ़े शरीर में हैं, हम उसी के बालक हैं। ये सत्य जो है कभी मिटता नहीं है कि हम उसके बालक हैं, नास्तिक व्यक्ति भी उसका बालक है, वो मानता नहीं, खाली इतना ही फर्क है बस। लेकिन सत्य जो है हमारे न मानने से, हमारे मानने से कभी भी बदलता नहीं है। इस सत्य का आश्रय लेना ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, और उसका आश्रय लेने के माध्यम जो है वो भी उसी व्यक्ति ने हमको बताए हुए हैं। और आज की स्थिति में समय का प्रभाव कैसे देखिए आप, अगर हम सत्ययुग में होते तो भगवान ने कहा है कि मुझे प्राप्त करने का मार्ग जो है वो ध्यान मार्ग है, कई हजारों साल तक ध्यान करेंगे तो शायद मेरी प्राप्ति हो सकती है। फिर समय बदलता है, सत्ययुग नष्ट होता है और त्रेतायु आरंभ होता है। क्या होता है उसके प्रभाव से? जितने सद्गुण है उसमें से 25% सद्गुण समय के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, और जब त्रेतायुग का आरंभ होता है तो वो 75% सद्गुण के स्थिति से त्रेतायुग का आरंभ होता है। अब जो समाप्त होता है तो उसमें से 25% सद्गुण जो है वो खत्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उस अवस्था में यज्ञ करना ये मुझे प्राप्त करने की तरीका है। वो युग समाप्त होता है तो 50% सद्गुण जो है वो बचते हैं, उसको हम द्वापर युग कहते हैं, और 50% से वो युग आरंभ होता है और 25% में समाप्त होता है, मतलब और 25% गुण जो है, अच्छे गुण जो है, द्वापर में समाप्त होते हैं। द्वापर भगवान में कहते, भगवान कहते हैं कि अभी ये जो 50% सद्गुणों का ह्रास हो चुका है तो आप क्या करोगे। अच्छा, आपके लिए और एक आसान तरीका बताते हैं, जो ध्यान से और यज्ञ से भी आसान है, मेरे विग्रहों की पूजा करना मंदिरों में। लेकिन जब कलयुग का आरंभ होता है तो 75% सद्गुण जो है वो ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं, 25% पे उसकी शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे 24, 22, 21, 20, 10, आज पता नहीं कितने परसेंट में हम लोग आ गए और 0% पे खत्म हो गए। तो भगवान भी बताते हैं, हाँ, कलावस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विप्रदतः, कि ऐसा युग है इसके अंदर कोई सद्गुण है ही नहीं, प्रायण अल्पायुषा, आयु भी छोटी हो गई है। सत्ययुग में 1,00,000 साल आयु थी मनुष्य की, वो द्वापर में जब त्रेता में आए तो 10,000 साल हो गई, 1/10। फिर द्वापर से सत्य में, सॉरी, त्रेता से जब द्वापर में आए तो 10,000 का 1,000 साल हो गया, जब भीष्म देव वगैरह थे उनका मैक्सिमम लाइफ 1,000 ईयर्स था। और जब कलयुग आरंभ हुआ तो उसके भी 1/10, मतलब 100 से आरंभ हुआ। और आज क्या एवरेज लाइफ क्या है, कोई 58 कहता है, कोई 55 कहता है, हमारे बचपन में 70 बोलते थे, आज 58 हो गया है। आप भी थोड़े देर साल के बाद में बोलेंगे 50, बाद में बोलेंगे 45। कलयुग में अंत में कहा गया है कि 6 साल की उम्र में व्यक्ति पूरा जीवन समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, 6 साल, बाद में 6 महीने हो जाएंगे उसके, ये शास्त्र में दिया हुआ है, उसका प्रभाव हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे युग का ह्रास होता है, सद्गुणों का ह्रास होते लगता है, तो भगवान को प्राप्त करने का तरीका भगवान स्वयं उसको और आसान और आसान और आसान कर लेंगे। इसलिए जो सत्ययुग में कह रहे थे कि 1,000,000 साल ध्यान करना होगा, वही भगवान कलयुग में क्या कह रहे हैं, कलौ तद हरि कीर्तनात्, मतलब केवल हरि का नाम लेकर ही कलयुग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में ना हम ध्यान कर सकते हैं, ना हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब कुछ छोड़कर संन्यस्त होकर वैरागी होकर जंगल में जाकर ध्यान करें, नॉट पॉसिबल। कोई व्रत करेंगे तो कितना डिफिकल्टी है, मम्मी व्रत में क्या खा सकते हैं, आज व्रत है एकादशी का, आलू खा सकते हैं कि कुट्टू के आटे का हलवा खा सकते हैं कि केला खा सकते हैं, कितना विचार मन में आता है। अरे व्रत का मतलब ही है निर्जल व्रत करना, मतलब कोई खाना पीना है ही नहीं उसके, लेकिन कलयुग में कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल। प्रायण अल्पाविषा कलावस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो, मतलब क्या उनकी मति इतनी भ्रष्ट हो गई है, अच्छे विचार आते ही नहीं मन में, हमेशा दूषित रहता है मन, अलग अलग प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं, कोई याद नहीं रहता है कुछ चीज़ का। हाँ, सबसे जो मेमोरी जिसकी अच्छी है उसको भी कुछ अगर 10 अंक का नंबर बताया जाए उसको याद नहीं रहता है। हमारे बचपन में हम सब गणित जो है मन में करते थे, आज हर चीज़ को 10 by 10-5 भी कैलकुलेटर लगता है, 10-5 5, अरे वाई कैलकुलेटर, नहीं सर आदत हो गई अभी, दिमाग ही बंद हो गया अभी काम करने। सब चीज़ अभी जब फोन आया था तो हमारे सब फोन हमको याद रहा करते थे, मुझे अभी भी याद है। आज आप पूछो एक फोन, किसी का फोन नहीं याद नहीं, सब मोबाइल के अंदर है, मोबाइल गया तो सब नंबर भी गए, दोबारा पूछो क्या नंबर है। मतलब ये प्रगति हो रही है कि अधोगति हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है, अधोगति हो रही है। सारे जो सुविधाएं हैं, सहूलती जो है, वो हमसे छीने जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आ गया है, पाम टॉप आ गया है, लेकिन हम लोग इतने निर्भर हो चुके हैं उसके ऊपर कि वो खत्म होता है, जब क्रैश होता है हार्ड डिस्क उसी, तो हम एकदम हैंडीकैप हो जाते हैं, बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। पहले से था क्या, पहले कुछ नहीं था, ऐसे मोबाइल के बिना जिंदगी चल रही थी ना हमारी, सब लोग लैंडलाइन फोन करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। आज लगता है कि मोबाइल के बिना जी नहीं सकता, अरे हाथ में मोबाइल लेता है कुछ खो रहे हैं, कुछ जीवन में कुछ कमी है, सब जीवन में कोई हिस्सा खत्म हो चुका है ऐसा लगता है। एक दिन मोबाइल अगर बंद पड़ गया तो लगता है कि जीवन का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। तो ऐसे भयंकर युग में भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, सद्गुण भी नहीं है, स्मरण शक्ति भी नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छे कार्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना वैराग की भावना हो सकती है, ना त्याग की भावना हो सकती है, कोई बात नहीं है, मैं मुझे प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बड़ा आसान कर देता हूँ, कोई बात नहीं। जो बच्चा भी ले सकता है, बुढ़ा भी ले सकता है, बुद्धिमान भी ले सकता है, बुद्धिहीन भी ले सकता है, मूर्ख भी ले सकता है, स्त्री ले सकता है, ले सकती है, पुरुष ले सकता है, पढ़ा लिखा ले सकता है, अनपढ़ भी ले सकता है। हाँ, जो आरोग्य संपन्न है, बड़ा हेल्दी है वो ले सकता है, एकदम बीमार है वो भी ले सकता है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें वो मेरा नाम नहीं ले सकता है। ऐसा नाम ले लो और जीवन की हर अवस्था में मुझे याद करो और मुझे प्राप्त करो। कितने दयालु हैं भगवान। ये भी समय का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में है इसलिए कलयुग का जो फॉर्मूला है भगवान को प्राप्त करने का वो कलयुग के अनुसार है। समय के प्रभाव से बदला हुआ है वो, लेकिन है वो दिव्य। वो आपको भगवान से जोड़ देगा, भगवान से मिलाप कर देगा आपका। इसलिए बुद्धिमानी क्या है, चलो हम लोग कलयुग में जन्म ले चुके हैं कोई बात नहीं, सत्य के लोग हमको देख के हंस रहे हैं, देवता लोग देख के हंस रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देवताओं को भी जो प्राप्त नहीं है, सत्य के लोगों को ध्यान करके जो प्राप्त नहीं होता है, त्रेता के लोगों को यज्ञ करके जो प्राप्त नहीं होता है, द्वापर के लोगों को मंदिरों की पूजा करके जो प्राप्त नहीं होती है, वो बड़ी आसानी से बड़ी कम समय में कलयुग में भगवान के नाम का जप करके प्राप्त हो सकता है। इसलिए सत्ययुग के, द्वापर के, त्रेता के सारे संत लोग और देवता लोगों के सारे देवता लोग कलयुग की पूजा करते हैं। शास्त्र में लिखा है कलयुग का गौरव और पूजा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कलयुग में एक ऐसी वस्तु है जो बड़ी ही आसानी से कुछ ही समय में भगवान से मिलाप हमारा कर सकती है। कलिर दोषे निधिर राजन, कलि सागर है दोषों का, लेकिन अस्ति एक महान गुण, उसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। इस कलयुग के भयंकर अवस्था में भी वो एक वस्तु ऐसी है जो कलयुग को पूजनीय बना देती है। इतने भयंकर अवस्था में भी वो पूजनीय बन जाता है कलयुग, क्योंकि उसमें वो साधन है, उपलब्ध है। अगर आप बोलेंगे बहुत गटर है, बहुत गंदगी है, लेकिन वहां पर एक कोहिनूर का हीरा पड़ा हुआ है, तो जाके आप लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, कौन जाएगा गंदगी में, कौन? नहीं, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गो। नहीं, आप वो गंदगी का कष्ट सहेंगे लेकिन वो हीरो को उसमें से प्राप्त करेंगे। इसलिए अच्छी वस्तु गंदी जगह में मिलेगी तो भी उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी वस्तु अच्छी होती है। उस तरह से कलयुग के अंदर ये जो अस्ति एक महान गुण जो है, भगवान के नाम का कीर्तन एवं जप, इसको स्वीकार करना चाहिए। और जो हजारों साल ध्यान में नहीं मिलेगा, वो कुछ समय कलयुग के 70-80 साल के जीवन में भी प्राप्त करके, जप करके हम भगवान को मिल सकते हैं। तो सभी संत लोग सोचते हैं कि कलयुग बहुत खराब है, लेकिन कलयुग में जन्म लेना बहुत लाभकारी है, क्योंकि इतने लंबे समय तक प्रयास करने के बदले में छोटे समय में, छोटी आयु में, कलयुग के पतित जीवन में भगवान के नाम का सहारा लेकर जीवन की परम प्राप्ति जो है, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही रहस्य की बात है। इसको कहते हैं विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। सब दोषों का सागर है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर है। दिस इज ट्रांसेंडेंटल, मतलब त्रिगुणातीत, यही रहस्य है उसका। तो ये समय का प्रभाव जो है, ये एक भगवान का नाम लेने से तुरंत नष्ट हो जाता है। कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं। जो भी आप समझ रहे हैं कि आप खोने वाले हो, आपको जरा भी दुख नहीं होगा कि ये खोने वाला है, क्योंकि जो उसके बदले में प्राप्त होगा वो आपकी तुलना भी नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, आपको केवल 1 रुपया लगाना है बस, बोले 1 रुपया, मेरी आमदनी 50 पैसे के दिन में है, 1 रुपया कैसे लगाऊंगा मैं? लेकिन जो 10 करोड़ की वैल्यू समझता है, वो कर्जा लेके 1 रुपया लगा देगा तुरंत, क्योंकि 10 करोड़ जब मिलेंगे तो 1 रुपया क्या चीज़ है ऐसा लगेगा आपको। तो वैसे ही ये कलयुग का तुच्छ जीवन जो है थोड़े समय का, वो आप भगवान के नाम पे लगा देंगे तो आपको ऐसा जीवन प्राप्त होगा भगवान के धाम में, जिसके कोई अंत नहीं है ना कोई आदि है। तो चिरंतन जीवन भगवान के चरणों में प्राप्त होगा आपको। तो आपने कहा अच्छा है, कोई बात नहीं, कलयुग में कुछ समय के लिए कष्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ की प्राप्ति हुई कलयुग से, जिससे हमारे परम प्रिय जो परम पिता भगवान है, हमारे हित चिंतक है, सुहृद है, हमारे मित्र हैं, उनके चरणों में आश्रय मिलेगा। फिर दोबारा जाकर इस कलयुग में, सत्य में, त्रिता में, द्वापर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना देवता बनने की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी सुख की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ जरूरत नहीं है। जो आत्मा के लिए अनुकूल है, जो आत्मा के लिए परिपूर्ण है, वो सभी वस्तुएं, सभी स्थितियां भगवान के धाम में उपस्थित हैं और वो आपको प्राप्त हो सकती है। सबके लिए प्राप्त हो सकती है। हम बोले कोई गांव से है, कोई शहर से है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तत्रार पिता न स्वर्णिता न नियमे न कालह। इसको जपने के लिए कोई नियम की भी आवश्यकता नहीं। सुबह करो, रात को करो, दिन में करो, कभी भी करो, अच्छी अवस्था में करो, बुरी अवस्था में करो, सुंदर अवस्था में करो, कुरूप अवस्था में करो, धनी अवस्था में करो, गरीब अवस्था में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बंधन ही नहीं उसके अंदर। बिल्कुल नियम के परे, इतना आसान कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, समय को पार करने का तरीका कितना आसान बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर अभी हम लेने में चुकेंगे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं रहेगा। इफ वी मिस द चांस नाउ, फिर पता नहीं कौन सी योनि में रहेंगे, कौन से युग में जन्म लेंगे, वी डोंट नो, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। कलयुग में ऐसे कहा गया है शास्त्र में कि सारे देवता लोग जो ऊपर के लोकों में आनंद ले रहे हैं, हाँ, सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारे देवता जो है लाइन में खड़े रहते हैं कलयुग में वैष्णव भक्तों के घर में जन्म लेने के लिए। सब देवता नहीं लेते, जिसको ज्ञान हो चुका है वही देवता लेते हैं, बाकी सारे देवता जो हैं हम जैसे ही होते हैं, यहाँ पुण्य कर्म करके वहाँ जाते हैं, देवता का शरीर प्राप्त करते हैं और वहाँ भोग लेने का प्रयास करते हैं। उसमें से जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं नारद मुनि द्वारा, बृहस्पति द्वारा, अगस्त्य मुनि द्वारा, जो वहाँ पर जाते हैं बोध देते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं कलयुग में जो वैष्णव भक्त हैं उनके घर में जन्म लेने के लिए। क्योंकि जानते हैं कि देवता लोक के अंदर लाखों साल का जीवन होता है, वो उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल भोग प्राप्त होते। लेकिन वो अगर कलयुग में किसी वैष्णव के घर में जन्म लिया तो कुछ 60-70-80 साल के अंदर भगवान का नाम लेकर तुरंत भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो उसको बुद्धि कहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे लिए बेनिफिट क्या है, लाखों साल में शरीर का भोग लेते रहूं कि 60-70 साल कलयुग का कष्ट सहन करते हुए भगवान का नाम अपना कर स्वीकार करके भगवान के धाम में चिरंतन आनंद प्राप्त करने के लिए चला जाऊं। उस भगवान के धाम के चिरंतन आनंद के सामने सारे स्वर्ग लोगों के सुख जो है तुच्छ हैं, स्टूल यानी कि विष्ठा की तरह है। ये जिसको अनुभूति होती है वही समय के प्रभाव से परे जा सकता है, जिसको स्वर्ग का सुख भी नहीं मोहित करेगा, वो जानता है अभी मुझे नहीं मिल रहा है, अभी यहां बदबू वाला शरीर है, वहां तो खुशबू वाला शरीर है स्वर्ग में, चलो वहां जाके आनंद ले ले, लेकिन क्या फायदा है उसका। क्षणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, जितना पुण्य का आपका संचय है वहां तक वहां रहेंगे आप, पुण्य का संचय खत्म हो गया, वापस लौटना पड़ेगा। हवाई जहाज आकाश में कितना टाइम रहेगा, 2,00,000 लीटर पेट्रोल भर दिया उसके अंदर, कितना समय आकाश में उड़ेगा, हमेशा के लिए उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। जब 2,00,000 लीटर समाप्त हो जाएगा तो दोबारा उसको पृथ्वी पर आना पड़ेगा पेट्रोल भरने के लिए, फिर वो दोबारा उड़ सकता है हवा में। 10,00,000 भी भरेंगे तो एक समय आएगा वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा वापस। उसी तरह से कितने पुण्य करेंगे फिर भी पुण्य एक दिन खत्म हो जाएंगे भोग लेने के बाद में, फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। क्या लाभ है उसका, बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि ऐसा टेम्पररी सुख जो है चाहे हजारों साल का क्यों ना हो, व्हाट इज द बेनिफिट। एक दिन जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो लात मार के मुझे वहां से पृथ्वी पर भेज देंगे दोबारा अपना धक्का खाने के लिए, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, क्यों ये जो कीमती समय मनुष्य का जीवन का है वो मैं वेस्ट करूं वहां जाने के लिए। मुझे 2-3 सुविधा दी गई है, मैं बुरे कर्म करके नरक में प्रवेश कर सकता हूं, अच्छे कर्म करके स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं, या भगवान की भक्ति के कर्म करके स्वर्ग नरक दोनों छोड़ के भगवान के धाम में जा सकता हूं। तो क्या चुनना चाहिए कि चलो मनुष्य जीवन का समय जो है वो बहुत कीमती है। एक कुत्ता बिल्ली पंछी के समय जो है उसका एक वैल्यू होता है, लेकिन मनुष्य जीवन का जो मनुष्य समय है, ह्यूमन टाइम बोलते हैं उसको, इज अ मोस्ट वैल्यूएबल। क्योंकि मनुष्य जीवन के समय में हम जो सबसे श्रेष्ठ प्राप्य वस्तु है उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस मनुष्य जीवन का समय जो है बहुत कीमती है। इस समय को अगर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भगवान की प्राप्ति बड़ी आसानी से कलयुग में हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहा गया है, द ग्रेट चैंटिंग फॉर डिलीवरेंस। आत्मा को समय के प्रभाव से, त्रिगुणों के प्रभाव से, शरीर के बंधन से मुक्त कराने के लिए ये भगवान ने स्वयं अपने हाथों से महामंत्र दिया है। इति षोडशकम नामनाम कली सर्व कल्मष नाशनम, जितने भी कली के दोष हैं, समय का प्रभाव है, कर्मों का प्रभाव है, वो सभी ये मंत्र का जप करने से नष्ट हो जाते हैं। नतः परतरोपाय सर्व वेदेश दृश्यते, सब वेदों को जो आप छान मारेंगे तो भी आपको इससे बढ़िया उपाय भगवान की प्राप्ति करने का नहीं मिलेगा, ऐसे कली संतरण उपनिषद में कहा गया है। एकदम सरल सा वाक्य, सिंपल, एकदम सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन। केवल इस महामंत्र को सब मंत्रों से में जो श्रेष्ठ है, मंत्र का मतलब क्या होता है, मन त्रायति इति मंत्र, जो मन को गलत प्रभाव से मुक्त करता है उसको मंत्र कहते हैं, उस ध्वनि को मंत्र कहते हैं, मन को त्र यानी कि मुक्त करने वाला। और ये महामंत्र है, ये सबसे श्रेष्ठ तरीके से मन को हर प्रभाव से मुक्त करेगा, और केवल प्रभाव से मुक्त करके शांत नहीं कर देगा, भगवान की प्राप्ति भी करा देगा। केवल नेगेटिव नष्ट नहीं करेगा, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वस्तु है उसको आपको प्राप्त करा देगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है? अंकल आपका कोई प्रश्न है? थोड़ा मिस हो गया आपका, अब बाहर गए थे। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, जो मैंने कहा है उसके बारे आपको शंका है कोई? यस सर प्लीज, माइक्रोफोन दीजिए।
अभी आपने हरे कृष्ण को कभी आपने बताया कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, ये महामंत्र है, ऐसे ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये भी मंत्र है, या आपको दो दिवस तक करेंगे दो दिवस ये सभी मंत्र है, लेकिन क्या कारण है कि हरे कृष्ण को महामंत्र कहा है?
क्योंकि ये स्वयं भगवान ने कहा है, यही तो उसका कारण है। मुझ में क्या शक्ति है किस मंत्र को जानने की और किस मंत्र की महिमा को जानने की? भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये जो कली संतरण उपनिषद है ये व्यास देव ने लिखा हुआ है। हाँ, व्यास देव जी ने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास, आरण्यक, महाभारत सब उन्होंने लिखा है। और व्यास देव कौन है? भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें एक ऐश्वर्य है ज्ञान। उस भगवान के ज्ञान ऐश्वर्य जो है उसके अवतार व्यास देव जी हैं, मतलब स्वयं भगवान ही है वो एक्चुअली, लेकिन एक हिस्से के अवतार हैं वो भगवान के। भगवान का जो ज्ञान है वो व्यास देव के रूप में प्रकट हुआ और व्यास देव जी के रूप में उन्होंने वो सारे को लिखा कलयुग के शुरुआत में, ये देखते हुए कि कलयुग के लोगों को याद नहीं रहेगा। उसके पहले 3 युगों में केवल कहते थे और लोग याद रखते थे, उसका कहते थे श्रुति, लेकिन श्रुति जब खत्म हो गई तो ये देखते हुए त्रिकालदर्शी संत जो हैं व्यासदेव जी, उन्होंने देखा कि आगे लोगों को याद नहीं रहेगा, तो सौ ज़्यादा जितना ज्ञान था वो उन्होंने लिखा ग्रंथ रूप में, वापस हम उसको रेफर कर सकते हैं। तो उसमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद, मतलब जो व्यासदेव ने लिखा वो भगवान का वाक्य है। तो उसमें वो कहते हैं कि कलयुग में अगर पार होना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये महामंत्र है। पहले ऐसा लिखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम, मतलब ये 16 शब्दों में जो जप करेगा वो कली सर्व कलमश नाशनम, कली के सर्व कलमश को नाश करेगा। नतहा परतरोपाय, और कोई उपाय सभी वेदों में जो मैंने लिखा हुआ है उसमें कहीं आपको नहीं प्राप्त होगा। तो ये महावाक्य, मतलब ये भगवत वाक्य है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान का वाक्य है वही सब को तारने वाला है। लेकिन अगर श्रद्धा से आप पुकारेंगे, समझो आप श्री राम जय जयराम पुकार रहे हैं और आपके अंदर लगन है, ध्यान है, समर्पण है, तो आपको वही लाभ होगा। कहते इसलिए है कि अगर आपको किसी मंत्र से अटैचमेंट नहीं है तो आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, लेकिन अगर आपको श्रद्धा है राम के नाम पर, नरसिंह के नाम पर, मतलब जो भगवान के अनंत नाम है उसमें आपको अगर श्रद्धा है, जितनी आप भगवान को लगन से चाहते हैं उस नाम के माध्यम से, तो आपको वही प्राप्ति होगी। इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली क्या है, चेतना है आपकी। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो और सोचते हो कि मुझे अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, मुझे अच्छा पैसा मिलना चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, तो मंत्र महामंत्र कैसे बनेगा आपके लिए? वो तो आप भौतिक लाभ चाह रहे हैं उससे, है ना। लेकिन महामंत्र करेंगे, जप करेंगे और भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे, भगवान की सेवा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो वो आपके लिए महामंत्र के रूप में काम देगा आपको। यू आर एनकैशिंग द मंत्र एज महामंत्र, नॉट फॉर मटेरियल गेन।
हाँ,
लेकिन अगर आपको किसी से अटैचमेंट नहीं है तो जरूर इससे आप अटैचमेंट बनाइए, क्योंकि ये भी भगवान ने ही कहा है अल्टीमेटली। और कोई प्रश्न है किसी का?
कितने बार करना चाहिए?
भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, वो कहते हैं कि जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वो निरंतर उसका नाम जप करते हैं। लेकिन हम बोलेंगे अरे अभी तो हमको अभ्यास भी नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो शुरुआत आप बता रहा हूँ, शुरुआत आप एक माला से कीजिए, अभ्यास कीजिए, उसका आदत बनाइए, फिर दो माला कीजिए, फिर तीन माला कीजिए, चार माला कीजिए। फिर हम लोग सब दीक्षा प्राप्त करने के लिए रोज 16 माला करते हैं, जीवन भर 16 माला का नियम लेते हैं। लेकिन वो नियम का मतलब मालूम है क्या है? मिनिमम 16 राउंड नियम है, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। और अंतिम स्थिति ऐसी है कि आपके मन के अंदर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो धुनी है वो चलते रहना चाहिए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम करते हुए सब कुछ व्यवहार करते हुए अंदर से बैकग्राउंड के अंदर मन के अंदर पार्श्व भाग में पार्श्वभूमि पर वो मंत्र जो है चलते रहना चाहिए। वो कब होगा? जब आप मुख से हमेशा अभ्यास करेंगे उसका, कभी 16 माला करें, आज एकादशी है 25 माला करेंगे, और जन्माष्टमी 64 माला करेंगे, और कभी समय में यात्रा में गए तो 100 माला करेंगे, समझो। क्योंकि उस समय हम और कुछ करते ही नहीं, और यात्रा में तो भगवान के लिए जाते हैं ना, भगवान कथा सुनते हैं, भगवान के लिए धाम में रहते हैं, सब कुछ छोड़कर जाते हैं, वो दिन भर जप करते हैं। ऐसा अनेकों साल अभ्यास करने से वो स्थिति आएगी आपके मन में, वही चलता रहेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको शुरुआत करनी चाहिए, एक माला से क्यों ना हो, उसी के लिए मनुष्य जीवन है। इसलिए कोई ऐसा पक्का नियम नहीं कि 5 ही माला करनी चाहिए, 10 ही माला करनी चाहिए, 16 ही करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कहीं से करनी चाहिए। इट विल बिगिन विथ 1 एटलीस्ट, देन इट विल गो 2, 3, 4, 5। और कोई प्रश्न है किसी का? माताओं में से कोई प्रश्न है कोई? एनीबडी? हाँ, बिल्कुल कहा था, सही बात है। भगवान ने भगवद गीता में सब कुछ बताया है, जैसे वो कहते हैं कि प्राणियों में मैं सिंह हूं, पेड़ में मैं अश्वत्थ हूं, जल का स्वाद मैं हूं, हाँ बलवान का बल मैं हूं, और सब मंत्र में गायत्री मैं हूं, तो बताया हुआ है। ये भी सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन भगवान का नाम और भगवान स्वयं इसमें कोई अंतर नहीं है। जो गायत्री मंत्र है उसमें भगवान की सूर्य से तुलना की गई है, कि जैसे हमारे आंखों के सामने सूर्य का प्रभाव है, उसका आभा है, उसका तेज है, वैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, उस पर आपको ध्यान करना चाहिए। जो सूर्य के समान अनंत तेजस्वी है उस पर हमको ध्यान करना चाहिए, धीमही। हाँ, लेकिन उस व्यक्ति का नाम अगर कृष्ण है तो एकदम वो डायरेक्ट एड्रेस हो गया है ना। अगर आपको मैं कहा कि जो फलाना व्यक्ति के समान दिखते हैं उस व्यक्ति ये इनका नाम ये है, मतलब आपने इनडायरेक्टली उसका जिक्र किया, तुलना किया और वर्णन किया। लेकिन मैंने कहा कि आपका नाम मिस्टर सावंत है तो इस डायरेक्ट एड्रेस डायरेक्टली आप बोल मिस्टर सावंत, तो आप मुड़ के देखेंगे मिस्टर सावंत कौन है। तो वैसे जो कृष्ण भगवान का नाम है ये डायरेक्ट एड्रेस है उनका। और बाकी जितने जो मंत्र आपने गायत्री बताया, गायत्री तो कई प्रकार के गायत्री होते हैं, एक गायत्री नहीं होता है। जो सबसे कॉमन गायत्री है वो ब्रह्म गायत्री या सूर्य गायत्री कहते हैं उसको, ये भगवान का ही जिक्र है उसके अंदर। और जिनको पूर्ण अनुभूति नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, उनके लिए उदाहरण के तौर पर संदर्भ देकर बताया कि कैसे भगवान को हम समझ सकते हैं, कैसे उनका प्रभाव और आभा होगी। तो हमारे सामने सबसे पावरफुल चीज वस्तु कौन सी है? सूर्य है। प्रकाश की दृष्टि से सबसे प्रकाशमान कौन सी वस्तु है? हमारा सूर्य है। तो आप सकते हैं, देखो वो सूर्य कितना प्रभावी है, उससे अनंत गुना प्रभावी तेजस्वी भगवान होते हैं। तो आपको कुछ कल्पना आएगी कि भाई हाँ, अगर ये इतना महान है तो फिर वो कितनी महान होंगे। बस इनडायरेक्ट एड्रेस, ये तो कई रास्ते हैं भगवान को जानने के और समझने के। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं गायत्री हूं, वो भी सच है। और जब वो कहते हैं कि मैं, मेरा नाम, मेरा लीला, मेरा धाम और मेरे गुण अभिन्न है, वो भी सत्य है। अभी आप सोचिए आसान और प्रत्यक्ष कौन सा है, और उसको पकड़ लीजिए, दैट्स इट। अभी हम भी गायत्री करते हैं, हमको भी भगवान गुरु महाराज ने गायत्री मंत्र दिया है, ब्राह्मण दीक्षा दिया है, और एक नहीं कई गायत्री मंत्र दिए हैं जो हम गुप्त जप करते हैं उसका। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं, और हमारे गुरुजी ने हमको ऐसा सिखाया है कि हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान की प्राप्ति होगी, और हरे कृष्ण महामंत्र की शुद्ध तरीके से जप करने के लिए आपको गायत्री दिया गया है। जब गायत्री जप करेंगे तो आपका नाम जप जो है वो और अधिक शुद्ध हो जाएगा। ये जो गायत्री जप हम करते हैं उससे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध चेतना से जब हम भगवान का नाम लेंगे तो वो और अधिक पवित्र होते जाएगा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो पहले हरिनाम, और अगर आपको गायत्री मंत्र प्राप्त में नहीं हुआ, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, फिर भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि नाम जो भगवान का है वो बड़ा पावरफुल है। उसको अधिक हमारा जप शुद्ध करने के लिए हमको गायत्री मंत्र मिलता है गुरु जी से, ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। दिस इज एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? यस आप बताए। यस माइक्रोफोन दीजिए क्विकली, गो एंड गिव माइक्रोफोन क्विकली। उधर इधर पीछे। यस गुरु से हाँ हाँ ऐसा है। जैसे हमारा संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय, इसमें हरे कृष्ण मंत्र सबको देते दीक्षा में, और कई संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें कोई गुप्त मंत्र देते हैं जो हम बोल नहीं सकते, मन के अंदर जपते हैं उसको। लेकिन वो मंत्र जो गुरु मंत्र आप कहते हैं, उस मंत्र का भी अर्थ एक ही है कि आपको भगवान नाम पवित्र शुद्ध करने के लिए ही उसका प्रभाव होता है। होता है कि नहीं होता है? वो जब आप गुरु मंत्र जपते हैं तो आपका नाम जप जो है वो सिद्ध हो जाएगा। आपका नाम सिद्ध करने के लिए वो आपको मंत्र दिया गया है। तो अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है कि भगवान नाम में हमारा ध्यान लीन हो जाए। इसलिए गुरुजी आपको गुप्त मंत्र देते हैं, वो जप करने आरंभ में आप करते हैं ताकि आपके भगवत नाम जप करने की तैयारी हो जाए। इज दैट राइट? हाँ उनको दीजिए। प्रश्न क्या आपका? प्रश्न आप ऐसा महसूस मत कीजिए, आप केवल इतना महसूस कीजिए कि आप भगवान की सेविका है। बस जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सब चिरंतन रूप में भगवान के सेवक है। और हमारा सेवा क्या है? गोपी का सेवा है कि कोई और किसी चीज का सेवा है? वो आपको आप बताया जाएगा भगवान के द्वारा, आपको क्या प्रकट किया जाएगा भगवान के द्वारा। अभी की अवस्था में जब हम शरीर में बद्ध हैं, माया में फंसे हुए हैं, हमको इतना ही समझना है कि हम भगवान के सेवक हैं और ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और भगवान का नाम का जप करना है। जब इस ज्ञान के आधार पर आप भगवान के नाम का जप करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, और आपकी मूल भगवान की सेवा क्या है वह आपके लिए प्रकट किया जाएगा भगवान के द्वारा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आप तुरंत ये मत सोचते कि मैं गोपी हूं, क्योंकि आप समझ रहे कि आप स्त्री हो, लेकिन हम लोग पुरुष हैं और आप स्त्री हैं, ये समझना भी गलत है, क्योंकि हमारा शरीर पुरुष है और आपका शरीर स्त्री है। आत्मा का कोई सेक्स नहीं होता है। आत्मा इज भगवान का अंश, वो दिव्य होता है। किसको? कौन? हाँ तो वो एकदम परम अवस्था है, वो एकदम परम अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में हमको कम से कम एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए। फिर जब शुद्ध भक्त बनेंगे तो भगवान आपकी जो योग्य सेवा है वो आपको दे देंगे, चाहे वो गोपी की भी हो सकती है, या ग्वाल बाल की भी हो सकती है, या यशोदा मैया की भी हो सकती है, वात्सल्य में हो सकती है, या दास्य में हो सकती है, या गोपी की प्रणय में हो सकती है। वो तय करेंगे कि आपको कौन सी सेवा देना है। जैसे हम जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में तय करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए योग्य है। वो आदमी तय नहीं करेगा, साहब मैं आपके हॉस्पिटल में मैनेजर बनूंगा। मैंने कहा भले लगता नहीं आपका डिग्री और एक्सपीरियंस इतना योग्य है, आप चपरासी बनो, बाद में आपको सुपरवाइजर बनने का मौका मिलेगा, फिर धीरे धीरे मैनेजर बन लेना। ऐसा होता है कि नहीं? तो वैसे हमको हमारी अवस्था को सबसे न्यून समझना चाहिए कि हम बड़े न्यून अवस्था में हैं, शरीर में फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, अपने आप को माया में धकेल चुके हैं। अभी हम केवल ये जानना चाहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आपकी सेवा चाहते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हम एक ही मन भाव रखते हैं कि हे भगवान आपकी सेवा में हमको लगा लीजिए। वैसे जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे उसमें तो स्वयं भगवान आपको बताएंगे आपको क्या सेवा करनी आगे, गोपिका बन के करना है क्या और क्या करना है, ये भगवान के आप पर कृपा होगी और आपके लिए प्रकट किया जाएगा निश्चित रूप में। हर व्यक्ति को प्रकट होता है, आपको भी प्रकट होगा। और कोई प्रश्न है? यस ऐसा है प्रभु जी, जब हम बोलते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि तत्रार्पिता न नियमिता न स्मरण न काला, कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अनुकूल होती है और कुछ चीज़ें प्रतिकूल होती है ना। तो आपको पढ़ाई करनी है तो आप रास्ते पढ़ा नहीं कर सकते, आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, वहाँ पर अनुकूल वातावरण है उसके लिए। उसी तरह से अगर आपको जप करना है तो कोई जगह का बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मंदिर रहेगा तो आपका जप अच्छा हो जाएगा, अगर भक्तों का संग रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर सुबह का समय रहेगा तो अच्छा होगा। तो शुरुआत की अवस्था में रुचि उत्पन्न करने के लिए आपको सवेरे के समय शांत जगह पर या भगवान के मंदिर में या भगवान के भक्तों के संग में उसका अभ्यास करना चाहिए। जब आपका अभ्यास अच्छी तरह से होगा तो आप कहीं भी जप कर सकते हैं, चलते फिरते बस में ट्रेन में भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू की अवस्था में आपको, जैसे आप कॉलेज जाएंगे स्कूल जाएंगे तो आपको नियम होता है कि नहीं, 9 to 5 स्कूल होता है, ये इंग्लिश का पीरियड होता है, ये सब नियम से करना पड़ता है आपको, फिर आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। तो आपका रही बात मन में जप करने की, ऐसा है जब तक हमारी जिह्वा उसका उच्चारण नहीं करेगी और जब तक हमारे कान उसका श्रवण नहीं करेंगे, मन उसके अंदर फंसेगा नहीं, मन भागता रहेगा कहीं ना कहीं। इसलिए शुरुआत के अंदर उसको कहते हैं वैखरी, यानी कि मौखिक, मतलब मुख से जप करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ध्वनि के अंदर ही भगवान है। हाँ, जब भगवान का नाम हम उच्चारण करते हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो उस नाम के ध्वनि में भगवान उपस्थित रहते हैं। उसको जब सुनते हैं तो भगवान का अस्तित्व का अनुभव होता है और वो अनुभव मन से होता है। तो मुख से बोलना और कान से सुनना, ये दो क्रिया बहुत जरूरी है, श्रवण और कीर्तन, तब जाकर स्मरण होता है और स्मरण मन से होता है। तो मन को अगर आपको लिप्त करना है तो आपको मुख से बोलना पड़ेगा, क्योंकि मन में आप बोलने लगेंगे तो तुरंत मन आपको कहीं और ले जाएगा, किसी और चीज़ का विचार मन में आएगा, तो आपको लगेगा अरे मैं जब कर रहा था क्या हो गया उसका, वो तो मन किसी और ट्रैक पे चल रहा है। लेकिन जब जोर से जब करेंगे, मतलब जोर चिल्ला के नहीं, आपको सुनाई पड़ना चाहिए बस, उतना उच्चारण करेंगे तो आपका मन उसमें लिप्त हो जाएगा और जब मन को रुचि लगेगी तो ये आपका जब आगे बढ़ेगा। अगर मन भटकेगा तो आपका जब आगे नहीं बढ़ेगा। वो मैकेनिकल होता है, वो जैसे कि मशीन की तरह टाइपराइटर से आवाज आएगा, टक 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 टक, उसमें लाभ कुछ नहीं होगा। इसलिए आप एक जगह बैठिए, सीधे बैठिए, शांत जगह पे बैठिए, स्वच्छ जगह पे बैठिए, स्नान करके बैठिए, सुबह के समय में बैठिए और भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, प्रार्थना पूर्वक सुनिए। जैसे मैंने कहा हे भगवान आपको हमारी हमको आपकी सेवा में लगाइए, इस प्रार्थना के साथ में उसका उच्चारण कीजिए, तब आपका मन लगने लगेगा धीरे 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 धीरे, फिर आपको उसमें आनंद आने लगेगा, रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है? यस, हाँ माता जी, ऐसा पकड़िए माइक को। अभ्यास, अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान को पूछा था कि मैं झंझावात को रोक सकता हूं मेरे बल से, लेकिन मन को नहीं रोक सकता हूं, क्या करना चाहिए? ऐसा भगवान को अर्जुन पूछते हैं और भगवान ने उसका प्रत्यक्ष उत्तर दिया है, अभ्यास करते रहिए, छोड़िए मत उसको। 5 साल हमने जप किया, अभी तक हमको मन लगता नहीं है, अरे हमने 5,000 करोड़ जन्म ले चुके हैं, हम लोग माया में रह चुके हैं, तो 5 साल में क्या होगा? बीमारी अगर बहुत बड़ी है तो शायद 5 साल दवा लेनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं ना आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, आपको लंबा इलाज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे साहब 1 महीना दवा ले चुका हूँ, अब तक बुखार नहीं उतर रहा है। बोले कोई बात नहीं, लेते रहिए, 6 महीने के बाद में उतरेगा। वो हमारी बीमारी जो है ना, भवरोग की बीमारी, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, पता नहीं कितने अनंत जन्म हम ले चुके हैं अलग अलग योनि में सुख भोगने के लिए भगवान को भूल कर। अभी उनको याद करना है, उनको उनसे मिलना है, तो उतना कीमत चुकाना पड़ेगा ना उसके लिए। इसलिए अभ्यास, अभ्यास मतलब और अधिक निकट जाना, अभ्यास का व्याख्या यही है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा है कि आप अभ्यास करते रहिए और वैराग्य मतलब भौतिक चीजों में मन लगाना छोड़ दीजिए, मुझ में मन लगाना प्रयास करते रहिए उसके लिए। इसलिए आप कहेंगे अरे मेरा तो अभी उम्र हो गया, अभी तो बहुत समय कम बाकी है। कोई बात नहीं, जितना भी समय बचा है लगा लो उनकी सेवा में, प्रयास में लगा लो। अल्टीमेटली भगवान क्या देखते हैं, अरे 70 साल की आयु में क्या क्या करेगा जीव कलयुग का। लेकिन अगर 100% प्रयास किया है तो उसका फल वो दे देते हैं। हाँ, आप क्या करते हैं, बालक ने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत काम दिया उसको घर में, आप क्या देखेंगे, नहीं प्रयास जरूर किया उसने, बहुत मेहनत किया है, तो उसका काम अधूरा हो गया फिर भी आप उसको बख्शीश दे देंगे। क्या देखते हुए कि आपने 100% प्रयास देखा उसको करते हुए। उसी तरह से हमारी उम्र भी कभी ज्यादा हो गई है, अभी समय भी कम बचा है, अभी कब भगवान की प्राप्ति होने के योग्य बनेंगे हम लोग। लेकिन भगवान क्या देखते हैं, प्रयास अगर 100% किया है, दिलो जान से किया है, तो भगवान आपको जीवन के अंत में उनकी प्राप्ति करा देंगे। लेकिन अभ्यास को आपको छोड़ना नहीं है। अरे इतने साल हो गए अभी भी रोमांच नहीं खड़े हो रहे हैं, अभी भी उनका अनुभूति नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। नहीं, गुरु ने जो कहा है वो करते रहिए, लगातार करते रहिए। डॉक्टर क्या बोलेगा, दवा लेते रहिए ठीक हो जाओगे एक दिन आप, श्रद्धा से लेते रहिए उसको। उसी तरह से बिना निरुत्साह होते हुए उत्साह और जोश के साथ में, संयम के साथ में लगातार निरंतर उनका नाम लेते रहिए। इसी जीवन में आपको उनकी प्राप्ति होगी अगर आप श्रद्धा से करते रहेंगे तो। मन में शंका नहीं आनी चाहिए, क्या हो रहा है, क्या उनको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कुछ परिणाम होता है कि नहीं होता है, पता नहीं क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलेगा आपको, डोंट वरी, आप दवा खाते रहो जैसे मैंने बताया ऐसा लेते रहो पत्ते के साथ में, तो वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आप उत्साह मत खोइए, लगातार ध्यान से प्रेम से उनका नाम लेते रहिए, इसी जीवन में प्राप्त होना है, याद रखना इस बात को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।